से एक भक्त प्रश्न किया था कि सेवा सेवा सबका प्रयोग किया जाता है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो नाम जपना कौन सी सेवा है? ये तो कोई सेवा नहीं है भगवान की। भगवान का नाम जपना, लीला गाना, ये सेवा नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसे सुनकर कृष्ण परम सुखी होते हैं कि कृष्ण करुणामृत सेवा है। कृष्ण को संतुष्ट करता है, इतना रस है उसमें कि वे स्वयं ही भावरों के साथ गात रहते हैं। भावरों के साथ ही नहीं, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन कर आए अपना जस गाने के लिए, उसे रहा नहीं गया। तो वृंदावन में श्री कृष्ण लीला का गान एक मुख्य कर्तव्य है, कार्य करते रहते हैं, भावरे गा रहे हैं। और उसी श्लोक में लिखा गया अनुव्रत उपगीयमान चरित, और श्री कृष्ण के अनुगामी भक्त जन, उनके सखा, उनके चरित का गान कर रहे हैं। उपगीयमान, उप का अर्थ होता है प्रेम से, स्नेह से, अथवा उप का अर्थ होता है निकट, या उप का अर्थ है बहुत अधिक। उपगीयमान चरित, श्री कृष्ण के चरित अक्सर गाए जाते हैं, सर्वदा गाए जाते हैं। वहाँ उस अप्राकृत धाम में, वृंदावन में थकावट नाम की कोई चीज नहीं, प्राकृत थकावट, वैसे अप्राकृत थकावट वहां भी होती है, स्पिरिचुअल है, तो गाते रहते हैं। और स्रग्वी, सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं, स्रग्वी मतलब स्रक वाला, स्रक कहते हैं वनमाला, फूलों की माला श्री कृष्ण बांधे हैं, तो वह माला या तो तत्काल वृंदाधि देवी बना करके अर्पित करती भगवान को, अथवा जहां भी जाते हैं श्री कृष्ण तो वहां से फूल लेन करते हैं, किसी वृक्ष का फूल बाकी नहीं रहता है, और वो फूल ले लेकर सखा तत्काल इनके लिए माला गूंजते हैं। इसलिए निरंतर माला बदलती रहती है, बदलती रहती है। और किसी वृक्ष के पुष्प को भगवान न स्वीकार करें तो बेचारा रोएगा, इसलिए चलो उसकी भी माला पहन ले। तो दिन भर में हजारों मालाएं श्री कृष्ण की बनती रहती और पहनते रहते, तो सरगरी सर्वदा सखागण तत्पर रहते हैं बनाने में माला, और अपनी अपनी माला वो बनाते हैं। हमारी माला बेस्ट होनी चाहिए, हमारी माला, हमारी माला पहन, हमारी माला पहन। और माँ जशोदा श्रृंगार करती थी, उनका घर से चलते समय वो रत्नों की माला पहनाती थी, फूलों की माला नहीं, और श्रृंगार करती थी। तो सखा आ करके वन में श्री कृष्ण के श्रृंगार को सुधार करते थे, ये ठीक नहीं, फूलों की माला होनी चाहिए, और उनके गाल पर, श्री कृष्ण के गाल पर ललाट पर लोग गिरिराज जिस कुछ गेल धातु लेकर के और चित्र में कर, और श्री कृष्ण छूट दे दिए थे, ठीक है श्रृंगार करो इस तरह, और वो क्षण क्षण में श्रृंगार होता रहता था, श्रृंगार होता रहता था। मुकुट ठीक नहीं है, मुकुट सीधा करते थे, मोरपंख लगाते थे, पेड़ों के नए नए पल्लव लेकर श्रृंगार करते रहते थे सर्वदा। उनकी चित्तवृत्ति पशु चराने में नहीं रहती थी, गोप सखाओं की चित्तवृत्ति कृष्ण में रहती थी, और लिखते रहते। और ये जो भी लीलाएं भगवान करते थे संकर्षण अनवितर, संकर्षण के साथ, श्री बलराम जी के साथ, मतलब भावरों के साथ जब वो गाते थे तो दोनों भाई गाते उनके स्वर में सुना कर, यह अर्थ है। और अनु जलपति जलपंतम कलवा के सुकम क्वचित, कहीं कहीं सुख पक्षी बोलते थे तो उनके जैसा बिल्कुल मधुर स्वर टे टे करके दोनों बोलते थे, वो जितना मधुर बोलते हैं उन्हें भी अधिक मधुर बोलते थे, जैसे बोलते थे वैसे बोलते थे। आज भी बच्चों का स्वभाव है, जो गाय चराने जाते हैं कहीं बाहर नदी तट पर, तो पक्षियों की बोली का अनुकरण करते हैं, कई बार तो अपने प्रतिबिंब, अपने प्रतिध्वनि को गाली भी देते हैं। जैसा पहले वर्णन हुआ था इसी भागवत में, जब श्री कृष्ण बिल्कुल बच्चा थे, नदी के तट पर जाते थे या सरोवर के तट पर, कहते थे अरे, तो वो भी बोलता था अरे मैं आऊं मैं आऊं, जैसा वो बोलते थे वैसे वो ध्वनि करते थे, ध्वनि होती थी। तो इस तरह श्री कृष्ण की लीला श्री बलराम जी के साथ इस तरह करते थे। कोई भी पक्षी बोलते हुए दिखाई पड़ता था तो उसकी तरह बोलने लगते थे। तो अनुजलपति जलपंतम सुकम, कोई सुख पक्षी जल्पना करता था तो उसके साथ ये भी जल्पना करते थे। कल वाक्य परम मधुर स्वरों में, श्री कृष्ण का कंठ परम मधुर है। जितने भी कंठ में स्वर बनाए गए हैं उस सबको भगवान ने बनाया है, तो उनका और क्वचित सवलगु कोकिलम, और कहीं कहीं किसी वृक्ष पर कोयल कुह कुह बोलता था तो श्री कृष्ण और बलराम भी उसके स्वर में स्वर मिला करके बोलते थे। ये तो आज भी पर अनुकरण कर, श्री कृष्ण को अनुकरण नहीं करना है, मनुष्य अनुकरण करता है लेकिन श्री कृष्ण तो उसकी बोली को स्वयं ही बनाए हैं, उनको अनुकरण नहीं करना है लेकिन फिर भी मनुष्य लीला में अनुकरण करते हैं। क्वचित च कलहंसा नाम अनुकूजति कूजितम, और कभी सरोवर या नदी में हंस चलते हैं तो वो भी कभी कभी कूजते हैं, मधुर स्वर बोलते हैं, तो उन हंसों के समान ही बोलते थे। पानी में तैरते हुए उनके साथ चलना और वे जैसे बोलते थे वैसे बोलना, वो जैसे डूबते हैं पानी में वैसे डूबना तैरना और जैसे बोले वैसे बोलना, इस तरह से बोलते थे। अभिनृत्यति नृत्यंतम बरहिणम हास्यन क्वचित, और कभी कभी मयूर के साथ नाचना चालू करते थे। मोर पक्षी नाचते थे तो उनके साथ नाचने लगते थे और ऐसा सुंदर नाचते थे कि मयूर भी लज्जित हो जाते थे, उतना अच्छा वो भी नहीं नाच पाते। हास्यन शब्द का हास्यन, श्री कृष्ण मयूरों से भी अधिक सुंदर तरीके से नाचते थे। और पीताम्बर को मुकुट के ऊपर टांग लेते थे तो यह उनके पंखों के समान हो जाता था, अथवा उनके पंख को हाथ में ले करके वे नाचते थे, उनसे अधिक सुंदर नाचते थे। नृत्यंतम वरहीणम अभिनृत्यति, अभिनृत्यति का अर्थ सामने नाचते थे, मोर नाच रहा है तो उसके सामने नाचते थे, नाचते हैं, हमेशा वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया गया। अनुकूजति अभिनृत्यति मेह गंभीरया वाचा नाम भी दुर्गान पसुन, इन क्रीड़ाओं में रत होने के बाद कभी कभी ध्यान जाता था कि गौएं कहाँ हैं, तो गौएं तो घास के लोभ से चरते चरते दूर चली जाती थी, कभी कभी वो दूर जाती थी, हमेशा नहीं, क्योंकि कृष्ण ही केंद्र थे पशुओं के भी गौओं के भी, तो कभी दूर चले जाते थे पशु तो उनको पुकारते थे, उनका नाम होता था, जैसे हम लोग आदमी का नाम जानते हैं मनुष्य का, वैसे पशुओं का नाम रहता है। सब जगह आज भी गांव में पशुओं के अलग अलग नाम होते हैं और उस नाम से पुकारने पर वो पशु आ जाता है, वो जानता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। तो नाम भी दुर्गान पशु, दूर गए हुए पशुओं को नाम लेकर पुकारते थे, हे धवली हे श्यामले हे गोमती हे गंगे जमुने, ऐसा नाम गौओं का, और श्री कृष्ण पुकारते थे बहुत सुंदर स्वर में, कभी कभी बिना बांसुरी के और कभी कभी बांसुरी में पुकारते थे। उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्वचित आहुयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया, श्री कृष्ण का वह पुकारना गौओं के लिए और गोपालों के लिए बड़ा मनोहर लगता था, बड़ा सुंदर था। इस प्रकार ये प्रतिदिन की लीला का वर्णन है। चकोर क्रौंच चक्राव भारद्वाजांश बरहिण अनुरौतिस्म सत्वानाम भीतवत व्याघ्र सिंहयः, कभी कभी चकोर क्रौंच चक्रा और भारद्वाज इन पक्षियों की बोली का अनुकरण करते थे और एक साथ कई पक्षियों की बोली को एक साथ बोलते थे और एक ही साथ सबकी ध्वनि निकलती थी। यह है परम पुरुष पर ब्रह्म का आनंद वृंदावन में। पक्षियों की बोली का अनुकरण करें क्योंकि ये पक्षी सब भगवान के भक्त हैं। कभी कभी अलग अलग अनुकरण करते थे और कभी कभी एक ही बार सभी पक्षी का एक बार में उच्चारण करते थे। ये संभव नहीं है किसी मनुष्य के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि श्री कृष्ण कभी कभी उच्चारण करते हैं अनुरौतिस्म सत्वान, जोर से बोलते हैं। और कभी कभी जब व्याघ्र सिंह यो, जब वृंदावन में बाघ और सिंह दहाड़ते थे तो श्री कृष्ण सखाओं के साथ भीतवत भयभीत की तरह चलते थे, भाग बाप रे बाप बचाओ, कंदरा में छिपते थे, पेड़ के ओट में छिपते थे और कुछ देर के लिए छाती धक धक करती थी, ये तो बाघ आ रहा है सिंह आ रहा है, इस तरह दोनों भाई भागते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भीतवत न, न भीत नहीं भीतवत, वास्तव में वह नहीं भयभीत थे, भयभीत की तरह भागते थे, इस तरह लीला करते। और वृंदावन के जो सिंह और बाघ हैं वे भी बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण को इस तरह भय का आनंद देने के लिए कभी कभी गरजते थे। यह स्वाभाविक है, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के अंगों में बाण मारते थे क्योंकि कृष्ण को उससे सुख मिलता था। उस समय क्षत्रिय आवेश में भगवान रहते हैं इसलिए बाण भी उनको सुख देते हैं। तो वृंदावन में बाघ की ध्वनि या सिंह की गर्जना श्री कृष्ण को एक भयानंद देती है, भय का आनंद, भयभीत होना, भागना, और कभी कभी आंख बंद करके रास्ते में बैठ जाते थे तो विपत्ति दूर हो गई तब चलते थे। और कभी कभी कहते उधर गाय मत ले जाओ, उधर गाय मत ले जाओ, इधर चलो भागो भागो जल्दी भाग जाए, ब्रज में चले जाए, बहुत खतरा है। इस तरह वे लीला करते थे। सर्वत्र वर्तमान क्रिया का प्रयोग भगवान की इस नित्य लीला को सिद्ध कर रहा। अनुरौतिस्म सत्वानाम भीतवत व्याघ्र सिंहयोः, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपवर्हणम स्वयं विश्रम्यत्यार्जुन पाद संवाहनाद्वि। कभी कभी श्री बलराम क्रीड़ा करने में खेलने में खास करके सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करने में थक जाते थे, सखा उन्हें थका देते थे श्री बलराम जी, तो ऐसा लगता था कि अब उनका दीर्घ निश्वास चल रहा है, वो विश्राम करना चाहते हैं। तो श्री बलराम किसी वृक्ष के मूल में किसी सखा के गोद में अपना सिर दे करके सो जाते थे, पैर पसार कर, अब थक गए। तो उस समय स्वयं विश्रमयति आर्जम पाद संवाहनाद्वि, भगवान श्री कृष्ण उनके चरण दबा करके, उनको पंखा झल करके, उनको गीत सुना करके और उनका श्रम दूर करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अरे प्रतिदिन स्वयं विश्रमयति, आप देख रहे हैं वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, स्वयं ही उनको विश्रमित करते हैं, श्रम शून्य करते हैं। पाद संवाहन आदि भी, आदि का अर्थ है और पंखा झलना, सज्जा लगाना, ये सब आदि शब्द से ध्वनित होता है। या श्री बलराम जी के लिए कुछ नाश्ता देना खाने के लिए वन से या घर से लाए हुए कुछ खा लीजिए, थक गए हैं, इस तरह श्री कृष्ण और उनको सुलाने के लिए गीत गाते थे श्री बलराम जी। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण उनको अपने बड़े भाई के रूप में मानकर प्रेम करते थे, कभी अपना सखा मानकर, कभी एक समान और कभी बड़ा मानकर, इस तरह लीला का आनंद लेते। और क्रीड़ा परिश्रांतम, श्री बलराम जी के लिए लिखा गया है वो खेल से थक जाते हैं, खेल में थक जाते हैं तो उनको सुख देते हैं। पाद मर्दन हस्ताद्यंग मर्दन व्यजनादि भी, ये पाद संवाहन का अर्थ है चरण दबाना, लेकिन शरीर का श्रम मिटाने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को दबाना पड़ता है, हाथ या सिर, वे सब दबाते थे भगवान श्री कृष्ण और पंखा झलते थे मुख्य रूप से। कभी दोनों भाई खड़े होकर बाह में बाह मिला करके और सखाओं की प्रतियोगिता को देखा करते थे, गान प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और कूदने और फानने की प्रतियोगिता, कौन कैसे ऊंचा कूदता है, किसी रस्सी या गमछे को लोग तानते थे और उत्प्लुत उसको कहते हैं, उत्प्लुत मतलब उछल करके उसको पार करना। तो दोनों भाई रेफरी का काम करते थे, सावस सावस इस तरह से, और बच्चे दिखाते थे अपनी अपनी कला। तो नृत्यतः कभी कभी नृत्य होने लगता था, नृत्य दिखाते थे कृष्ण बलराम, और ये दोनों बहुत प्रशंसा करते थे, वाह वाह। क्या प्रशंसा करते थे, कहते थे नृत्य में स्वर्ग के सभी विद्याधर निरस्त हो गए। धन्यवाद, ऐसा तो कोई विद्याधर भी नहीं नाच सकते हैं। और जब गान प्रतियोगिता होती थी तो भगवान कृष्ण और बलराम कहते थे कोई भी गंधर्व इतना सुंदर नहीं गा सकता, वो हंसी करते थे वास्तव में मजाक करते थे, और बच्चे कभी कभी चिढ़ जाते थे, तो क्या मैं अच्छा नहीं गा रहा हूँ क्या? तो कृष्ण कहते थे क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा कोई गंधर्व भी नहीं गा सकता, मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा तो कभी कभी बच्चे रज हो जाते थे, श्री कृष्ण कहते थे गाओ गाओ गाओ, नहीं वास्तव में सखा तुम बहुत गाते हो, लेकिन अति प्रशंसा ये निंदा मानी जाती है तो कभी कभी बच्चे रंज हो जाते थे, नहीं गाएंगे तुम, हमारी निंदा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण किसी न किसी तरह से मना लेते थे, नहीं नहीं निंदा नहीं कर रहे हैं, तो तुम गान नृत्य में विद्याधरों को निरस्त कर रहे हो, गान में गंधर्वों को, और युद्ध में तो त्रिलोकी विजेता इंद्र को भी परास्त कर रहे हैं। कभी कभी युद्ध होता था आपस में, युद्ध मतलब मल्ल युद्ध, पटकने की पहलवानी होती थी, इसको युद्ध कहो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम यही दोनों प्रशंसक होते थे, तरह प्रशंसा करते थे। और जब श्री कृष्ण थक जाते थे, कृष्ण एक हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कचित पल्लव तल पेशु नियुज नियुद्ध श्रम कर्षिता वृक्ष मूलाश्रय से गोपो तंगो को बरहना। कभी कभी श्री कृष्ण जब थक जाते थे क्रीड़ा में तो पल्लव तल पेशु पत्तों के बने हुए बिछौनों पर सो जाते थे, सेते सोते हैं। तल पे कहते हैं सज्जा को, और तल पेशु का अर्थ है सज्जाओं पर, बहुचन में। एक व्यक्ति बहुत सज्जाओं पर तो सोएगा नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो रहस्य को समझ रहे हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक सखा के अनुसार उसके अलग अलग बेड पर एक ही साथ सो जाते, वो सभी सेवा करना चाहते। अथवा शिल चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि तीन चार सखा मिल करके एक सज्जा लगाते हैं, खूब कोमल कोमल पत्ता तोड़ करके ठंडा ठंडा पाते हैं, श्री कृष्ण ये बहुत अच्छा है, इस पर सो, पंखा झलेगा, कोई चरण बाएगा, कोई बहुत सुंदर गीत गाएगा जिससे नींद आ जाए। अलग अलग लगाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो श्री कृष्ण उस समय अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं जिस सभी गोप सखा नहीं जान पाते हैं, तो वे सभी सज्जाओं पर सो जाते हैं, तीन चार चार सखा उनके श्रम दूर करते हैं। यही यहाँ का भाव है, क्वचित पल्लव तल नियुद्ध श्रम कर सकता, अतिशय युद्ध करने के कारण, मित्रा में युद्ध करने के कारण, खेलने के कारण वो थकते हैं, वो सोते हैं। वो तो तल्प बना देते हैं लेकिन वो तकिया नहीं बना पाते हैं, तो श्री कृष्ण हमेशा तकिया धारण करते हैं, पीलो वो गोपों के गोद को, उनके सखाओं के जो गोद है उसी में सिर रख सो जाते। प्रतिदिन की लीला, किसी भी सखा को यह सौभाग्य मिलने से बाकी नहीं रहता। एक ही श्री कृष्ण अलग अलग सज्जा पर अलग अलग स्वरूप विलास से सो जाते, वृक्ष मूलाश्रय वृक्ष के मूल में सोते, वृक्ष का मूल मतलब उसके उसी जो जड़े होते हैं वहां सो जाते हैं। यह वृंदावन में सोने की लीला भी कई बार होती है, कई जगह पर होती है, क्योंकि दिन भर खेलने के अलावा और कोई काम नहीं आता है खेलना थकना, और फिर विश्राम कर लिए तो फिर खेलना। एक खेलते रहते। अब सखाओं के सौभाग्य का वर्णन कर रहे सुखदेव स्वामी। वो सज्जा बनाते हैं तो कोमल नवदल कोरक पुष्पम, वृक्षों के नए पत्ते और फूल से वे सज्जा बनाते सुने के लिए। इस प्रकार सज्जाओं से वृंदावन भरा रहता है, क्योंकि रोज रोज सज्जा बनती है और सखा हजारों हैं, तो हजारों में अरे 1000 हो और 4 से भाग दीजिए, 4 सखा की एक सज्जा बनेगी तो 250 सज्जा एक दिन बंद हो श्री कृष्ण के लिए। और सोते और सोने पर वे लोग क्या करते थे, पाद संवहनम चक्रु चित्तस्य महात्मनः। कोई कोई सखा जो महाभाग्यवान थे वे महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाते थे। समस्त सज्जाओं के भक्तों को यहाँ लिया गया है जो चरण दबाते थे, इसलिए बहुवचन में प्रयोग। जो भी अलग अलग सज्जा पर चरण दबाते थे उनके लिए कहा गया, कुछ भाग्यवान सखाजन कृष्ण के पाद संवाहन करते, श्री कृष्ण का चरण दबाते, अथवा महात्मा कृष्ण महात्मा कृष्ण के चरण दबाते थे। यहाँ महात्मा का है जो विभु है, महान जिनका स्वरूप है, अर्थात अलक्षित रूप से अनेक सज्जाओं पर सोए हैं, महात्मा का ही अर्थ है। अपने वैभव प्रकट करके जो अनेक सज्जाओं पर सोते हैं तो इस तरह उनके चरण दबाए जाते हैं। अपरे हत पाप मानो व्यजने संबीर, और कुछ ऐसे सखा हैं जिनके जीवन का भाग है कि वे व्यजने संबीजयन पंखा झलते हैं। सम विजयन का अर्थ है सम्यक विजयन, सम्यक अभिजयन, बहुत उचित गति से भी पंखा झलते हैं। ज्यादा हवा कड़ी नहीं लगनी चाहिए और मंद भी नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदर गति से पंखा झलते हैं। और श्री कृष्ण तरह बात करते हुए धीरे 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 सो जाते हैं। तदन रूपी मनोज्ञानी महात्मन गायंती महाराजन महाराजा स्नेह समय। और कुछ सखा तदनुरूपाणी श्री कृष्ण के उस लीला के अनुरूप, मतलब शयन लीला के अनुरूप गान शुरू करते हैं। अलग अलग समय में और अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग राग होते हैं। शयन के समय नींद कैसे आ जाए कृष्ण को, वैसा वो राग जानते हैं, वैसा ताल जानते हैं, स्वर की ऊंचाई जानते हैं, उसके अनुसार वे गाते थे। स्नेह क्लीन दिया, स्नेह से आर्द्र हृदय उनका रहता था। स्नेह श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह, यहाँ स्नेह का अर्थ है कि हमारा मित्र हमारा सखा थक गया है विश्राम कर ले सुखी रहे, इसको स्नेह कर। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह है, उस तरह से स्नेह साते थे, स्नेह से दबाते थे, स्नेह से पंखा झाते थे। ये स्नेह क्लीन धिया सब जगह लगे, जो भी सेवा होती थी स्नेह से होती थी। स्नेह का अर्थ ही होता है जब हम किसी को सुखी करना चाहते हैं और हमारा चित्त पिघल करके बहने लगता है तो उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह का अर्थ संस्कृत में घी या तेल होता है, स्नेहयते इति स्नेह, जो बहता है वो स्नेह कहते। तो चित्त जब द्रवित हो जाता है भगवत प्रेम से और ये बहने लगता है, बहने का मतलब आंखों में आंसू आ जाए, रोमांच हो जाए, इसको स्नेह कहते। तो स्नेह से उगा रहे थे तो स्नेह के कारण आंसू आ रहा था, पुलक छा रहा था, इस आनंद से तो गा रहे थे, धीरे धीरे गा रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी प्रकाश समग्र लीला को पुनः गा रहे हैं। एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रे मे रमा लालित पाद पलव ग्राम्यै समं ग्राम्यवदीश चेष्टितैः। पुनः एवं लगा रहे इस प्रकार, इस प्रकार मतलब सुखदेव गोस्वामी लीला की अनंतता के कारण थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करना है, इसलिए एवं कह करके महाराज परीक्षित को संतोष दे रहे हैं। इस प्रकार हे महाराज मैं तो एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये तो अनंत लीला है, नित्य लीला है, इसका कोई और छोर नहीं। तो इस प्रकार रमा लालित पाद पल्लव जिनके चरण कमलों को रमा जी सहलाती रहती हैं सर्वदा, चरण दबाती रहती हैं, ऐसे चरण कमलों से भगवान श्री कृष्ण बृंदाव पाद पल्लव पल्लव जस्य स। यह रमा का अर्थ है श्रीमती राधा है। श्री राधा वन में कभी कभी जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को दबाया करती थी, सेवा करती थी। अथवा रमा का अर्थ श्री लक्ष्मी जी हुआ। अब जब भी लक्ष्मी जी का चित्र देखते हैं पढ़ते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण का सदा चरण दबाती रहती। नारायण नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मती, सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी जी को भगवान ने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी यही सोचती हैं कि मैं अपने प्रभु की दासी हूँ। सेवा करे दासी अभिमानी, अपने को दासी मानती है। हम लोगों के मंदिर में भी लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी की मूर्ति है और देखते हैं नारायण का चरण दबा रही है, चरण दबा रही। तो इसको कहते हैं रमा लालित पाद पल्लव। और चरण अतिशय सुकुमार है, ऐसे चरण कमलों से वे वृंदावन में घूमते रहते। इस चेष्टित और कभी कभी श्री कृष्ण ईश्वर की लीला करते, बीच बीच में वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। यद्यपि वह ऐश्वर्य गोप सखाओं पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो किसी असुर को मार देना, कोई विशेष कार्य करना जिसमें ऐश्वर्य प्रकट होता है, यद्यपि वे ऐश्वर्य प्रकट करते हैं परंतु गोप सखा उनको भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। कोई भी लीला करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान नारायण की दया है, ईश्वर उनके आशीर्वाद सब कर रहे हैं, यही उनकी भावना होती है। तो सब माया निगूढ़ात्म गति, अपनी युग माया से अपनी गति को, अपने महामाधि विशेष को जो छिपाए रखते हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपाए रखते हैं, और चरित्र गोपात्म जत्वम डम्बयन, अपने चरित्र से एक गोपात्मज की लीला कर रहे हैं। गोपयात्मज, गोप नंद बाबा को कहते हैं, जो गायों का पालन करते हैं उनको गोप कहते हैं। आत्मज पुत्र, नंद बाबा के पुत्र के रूप में। विडम्बयन, विलम्बयन, ड और ल में अंतर नहीं माना जाता है संस्कृत में, इसलिए ये अर्थ है कि गोपात्मज लीला को अपने भक्तों के हृदय में स्थिर करने के लिए वो रमण कर रहे हैं। यह भगवान की नित्य लीला है और वास्तविक स्वरूप की लीला है, यह कोई नाटक मात्र नहीं। इसलिए गोपात्मजत्वम विडम्बयन ग्रामे समम ग्राम्य व प्रेमे। ग्राम में कहते हैं जो व्यक्ति किसी विशेष कार्य में एक्सपर्ट नहीं होता है उसको ग्राम में रहते हैं, बहुत दक्ष ना है, जैसे खास करके आजकल के टेक्नोलॉजी में जो दक्ष ना हो उसको ग्राम में कहते हैं। और ग्राम में का यहाँ अर्थ किया गया है बंद, ग्राम में बंद। लेकिन चक्रवर्ती पर आ करते हैं ग्राम में अर्थ होता है किसी काम में बहुत तेज नहीं, चलाने में तेज हैं लेकिन और किसी कार्य में तेज नहीं, उसको ग्राम में कहते हैं। ग्राम में और नागर दो विपरीत शब्द है, नागर माने चतुर्दक्ष और नगर से नागर सब बना है, नगर के लोग नागर होते हैं और ग्राम के लोग ग्राम में होते हैं। तो बहुत एक्सपर्ट नहीं होते वो, बहुत जैसे नगर के रोड को लांघने में भी डर, एक्सपर्ट नहीं होते, इस तरह वो ग्राम में कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो समस्त कलाओं के आगर हैं, सर्व कला निधि हैं, ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी हैं, वे भी ग्राम्य उतरे में ऐसे वृंदावन विहार करते थे जैसे इनको बहुत बातों का ज्ञान नहीं, इस काल का ज्ञान नहीं, जैसे बाघ के भय से छिपना, भौरों के साथ गाना, इस तरह समय व्यतीत करना, खेल कूद, ये कोई अच्छा काम नहीं है लौकिक दृष्टि से कि लड़के खेलने में अपना जीवन बर्बाद कर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ग्राम्यवत रेम, ये ग्राम में जन की तरह वे कर रहे थे, सुख से विहार कर रहे। अब इस प्रकार श्री कृष्ण दैनिक लीला का वर्णन करके अब एक विशेष लीला भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो एक दिन हुई थी। तो घटना इस प्रकार की है कि भगवान के कुछ सखा भगवान के पास आकर कहने लगे कुछ बात और प्रेम से कहे, श्री दामानंद गोपालो राम के सवयो सखा सुबलस्तो कृष्णाद्या गोपा प्रेदम अब्रुवं। श्री रामा नाम के एक सखा जो राम और केशव के बहुत प्रिय है, श्रीमती राधा रानी के भाई हैं और राम केशव वो सखा, राम और केशव के सखा है। यहाँ श्री बलराम जी के लिए राम और कृष्ण के लिए केशव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है इस पर यह टीका की गई है कि श्री राम सबको सुख देते हैं, सबको रमाते हैं, आनंद देते हैं, इसलिए उनको राम कहते हैं। श्री बलराम जी का चरित्र प्रसिद्ध है भागवत में कि वे कभी भी कलह के नहीं हैं और दो पक्षों में अपने स्वजन कभी कलह होता था तो उसको वे समाप्त करने की कोशिश करते थे। जैसे पांडवों में कौरवों में कलह होने वाला था तो वे बहुत चेष्टा की कलह न हो। पांडव वन से लौटे तो एक मीटिंग हुई विराटनगर में जहाँ भक्षण गए थे, पिकी गए थे और श्री बलराम और उद्धव, पांडवों से भेंट हुई, चाहने लगा कि अब क्या किया जाए। तो श्री बलराम जी से पूछा भगवान कृष्ण ने कि क्या करना चाहिए। तो श्री बलराम जी कहे कि वो तो अपने बंधु ही हैं दुर्योधन या धृतराष्ट्र आदि, उनसे कलह करना ठीक नहीं है। तो सात्यकी जी कह दिए कि और मांगने पर नहीं देंगे तब, और मांगने पर आज नहीं दिए तब। तो श्री बलराम जी ने कहा कि भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। सात्यकी जी बयान कर दिए कि क्योंकि आपका चेला है दुर्योधन न, इनकी बात हमेशा दुर्योधन की ओर जाती रही, मांगने की क्या जरूरत है, चलिए जबरदस्ती युद्ध किया जाए और सबको मार करके राज लौटा दिए, समाप्त हो गया, क्या याचना करनी। लेकिन श्री बलराम जी के कहने से ही भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए, याचना करने के लिए कहा कि नहीं फिर भी मांगना चाहिए, जो मांगने के बाद भी न दें तब जैसा करना होगा वैसा करना, लेकिन पहले इस तरह से मांगा जाए। मांगने के बाद भी लोग नहीं दिए, युद्ध का समय निश्चित कर दिया गया। तो श्री बलराम जी ने कहा कि तो दोनों तो अपने बंधु ही हैं, इसलिए मैं किसी भी साइड से युद्ध नहीं करूंगा। तो वो तीर्थ यात्रा का बहाना करके निकल गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा माना जाता है कि ये पांडवों का पक्ष ले करके और पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरा नाश कर दिया। जो कुछ भी हो भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों को छोड़ करके चले जाएं, जब साथ देने का अवसर आया तो उस समय तीर्थ यात्रा चालू किया जाए तो ठीक काम नहीं है। हाँ नहीं तुमने सबका नाश करा दिया, ये किया वो किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कभी भी युद्ध नहीं चाहता हूँ, लेकिन युद्ध एक अनिवार्य बुराई है। जो शरीर में हम रोग नहीं चाहते हैं लेकिन रोग उत्पन्न हो ही जाता है, उसी तरह से हम युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन युद्ध करना ही पड़ता है। और जब युद्ध का अवसर आवे तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना न कि तीर्थ यात्रा करना है। दोनों भाई आपस में कभी कभी ऐसे करते थे, लेकिन फिर भी श्री बलराम जी के जीवन में देखा गया है कि हमेशा वे बंधुत्व चाहते हैं, कभी कलह नहीं चाहते। जब कौरव लोग सांब को कैद कर लिए थे लक्ष्मण के विवाह में, तो ये लोग सुने उग्रसेन आदि तो ये लोग कौरवों से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन बलराम जी ने समझाया कि नहीं वो अपने बंधु हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, रोक दिए। वो कहे कि मैं जा करके सब सलटा दूंगा। वो गए हस्तिनापुर, वो आज्ञा दिए कि उग्रसेन जी ने ये आदेश दिया है, लाओ सांब को उसकी दुल्ही के साथ, उसकी दुल्हन के साथ, लक्ष्मणा के साथ लाओ, ये मेरा आदेश है। लेकिन वे लोग उल्टे उनको बोलने लगे, ये जादव होकर के और कौरवों पर शासन चला रहा है, हम लोगों की कृपा से लोग सिंहासन पर बैठते हैं, मुकुट धारण कर रहे हैं और आकर के हम पर हुकूमत चला रहे हैं, जाओ तुम्हारे मन में जो हो कर लेना। श्री बलराम जी के सामने वे लोग बोल रहे थे और ये आए हैं जादवों को रोक करके उन शांति कराने के लिए। और श्री बलराम जी ने कहा कि जैसे पशु बिना डंडा के शांत नहीं होते हैं, ऐसे खलों के लिए दंड बहुत जरूरी। तो अब सुला नहीं, वो पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में फेंक देना चाहते थे, सबको उसी में मार देना चाहते, उखाड़ लिए हल से। लेकिन इसके बाद वे लोग आए क्षमा मांगे तो छोड़ दिए, ठीक है। फिर विवाह हुआ, वो ले गए अपने पुत्र वधु। इस तरह से भगवान श्री बलराम जी का राम नाम यह बिल्कुल सत्य है, यह उनके गुणों का वाचक है। वास्तव में श्री राम वे सबको सुखी करना चाहते हैं। और केशव श्री कृष्ण का नाम है, क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव और व मतलब कंट्रोलर। जो ब्रह्मा और शिव के भी नियंता हैं उनको केशव कहते हैं, अथवा जिनका केश बहुत सुंदर तरीके से संवारा जाता है उनको केशव कहते हैं। ये संस्कृत के अनुसार बहुत सुंदर केश है श्री कृष्ण का। तो यहाँ ये अर्थ है कि श्री बलराम अपने मित्रों को सुखी करना चाहते हैं, तो सुखी करने के लिए भी उनको तालबद्ध चलना चाहिए, ये अर्थ है। और कृष्ण ब्रह्मा और शिव को भी नचाने वाले हैं, इसलिए वे चलें उस असुर का वध करेंगे, ये भाव है। तो वहां करके कहे श्रीदाम सुबल और स्तोक कृष्ण और भी आकर प्रेम से यह बोले। प्रेम से श्री कृष्ण और बलराम को ताल बल ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर धेनुक नाम का एक असुर था जो ताल फलों को पूरा अपने कब्जे में रख लिया था, किसी को खाने नहीं देता था। वो ताल के फल पक पक कर सड़ते थे, गिरते थे और किसी को खाने नहीं देता था। तो बताइए ऐसी ऐसी शैतानी फल सब बेकार जा रहे थे। तो उन बच्चों ने सोचा कि कृष्ण बलराम अगर उसको मारेंगे तो इनकी कीर्ति बढ़ेगी, और मारेंगे निश्चित, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा है कि ये सर्वदा सफल होगा और पहले भी लीला देख चुके थे। तो बच्चों ने सोचा कि हमारे मित्र की कीर्ति बढ़ेगी और इसको भोजन मिलेगा, फल मिलेगा बढ़िया से, इसलिए वे कहे संबोधन करते हैं, राम राम महाबाहो, हे महान भुजा वाले राम, हे महान शक्तिशाली राम, और कृष्ण दुष्ट निवरहणा, हे कृष्ण हे दुष्टों का वध करने वाले। कृष्ण के लिए दुष्ट दमन संबोधन कर रहे हैं और बलराम जी के लिए राम, दो बार राम पहले संबोधन कर रहे हैं, हे राम। तो मानो श्री बलराम जी ने ध्यान नहीं दिया, तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए दोबारा कहते हैं राम, तब बलराम जी ने ध्यान दिया, क्या बात है। अथवा श्री बलराम जी के खेल के क्रीड़ा के अभिनिवेश को तोड़ने के लिए दो बार राम राम कह रहे, राम राम, वो तो खेलने में व्यस्त थे क्या। फिर कृष्ण को कहते हे कृष्ण, तुम तो दुष्टों का वध करने में बहुत तेज हो। तो भगवान कृष्ण बलराम ने कहा क्या कहना चाहते हो, तो कहते इतो अभिदूरे सुमहत वनम तालाली संकुलम, यहां से निकट ही एक वन है जहां ताल के वृक्ष बहुत संख्या में है। ताल बन जाने के लिए बच्चे कह रहे हैं, सुमहत वनम, बहुत बड़ा वन है, तालाली संकुलम, ताल वृक्षों की अवली से श्रेणी से वो भरा हुआ है, वहां पर तुम चलो। यह ताल वन मथुरा से पश्चिम है, अस्ति गोवर्धनम नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम, मथुरा पश्चिमे भागे अधुरात योजन द्वयम, मथुरा से गोवर्धन दो योजन पश्चिम है, और ठीक मथुरा और गोवर्धन के बीच में ताल वन है, थोड़े किनारे पर पड़ता है, तो वह है एक योजन पर है, मतलब मथुरा से चार कोस और गोवर्धन से चार कोस। मथुरा पश्चिमे भागे सतु देश सम स्निग्ध सुमहान कृष्ण मूर्ति का दर्भ प्राय स्थूलीभूतो लोष्ट पाषाण वर्जित। आज भी हम लोग देखते हैं उस भूमि का वर्णन जैसा किया गया है कि वह सतु देश सम, वो ताल वन का प्रदेश बिल्कुल सम है, आज भी कोई दर्शन करता है परिक्रमा में जाता है देख सकता, बिल्कुल समतल भूमि है। और स्निग्ध है, बहुत रुखड़ जमीन नहीं है, बहुत महान है फैला हुआ, और काली मिट्टी है, कृष्ण मृतिका दर्भ प्राय, और वहां कुश बहुत उगते हैं, कुश या मुंज बहुत उगते हैं, स्थूली भूतो लोस्ट पाषाण वर्जी पर, और थोड़ी सी उठी हुई जमीन है बहुत दूर में, और वहां कोई कंकड़ पत्थर नहीं है जमीन में, बिल्कुल चिकनी मिट्टी ये ताल बन। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पूछा कि ताल बन क्यों चले, क्या आवश्यकता है? तो वे कहते हैं फलानी तत्र भूरिणी, वहां बहुत फल है, फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानी च, वहां बहुत फल है। और फल है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फल बहुत है तो वो तो वृक्ष में ऊपर टंगे होंगे, हम उनको कैसे लेंगे? ताल का वृक्ष बहुत लंबा होता है और हम छोटे छोटे बच्चे, हम चढ़ेंगे नहीं, हम उस पर चढ़ नहीं सकते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं। तब बच्चे कहते पतंते रहते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में वृक्ष हैं कि सब में फल पकते हैं और गिरते रहते हैं सर्वदा, पतंती और पतितानी च, और कुछ तो पहले से ही गिरे हुए पतितानी, कुछ पहले से गिरे हैं और गिरते ही रहते हैं और आगे गिरेंगे, चकार से आगे गिरेंगे, तो गिर रहे हैं, गिरेंगे और गिरे हुए हैं, तोड़ना नहीं है, ताल वृक्षों पर चढ़ना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तब जाओ खाओ, तब क्या बाधा है, जब गिर ही रहे हैं और गिरेंगे, गिरे हुए हैं तो खाओ। तब ये कहते हैं संति किंतु अवरुद्धाने धेनु के न दुरात्मना, समस्या यह है कृष्ण की वे सारे फल दुष्ट धेनुक के द्वारा अवरुद्ध है, वो किसी को नहीं खाने देता है और अपने पूरे परिवार के साथ वो रहता है गधा के रूप में, और गधे तो फल खाते नहीं थे लेकिन रोक दिए थे कोई नहीं खा सकता, कोई पशु भी वहां का तीर्ण नहीं चल रहा था, न कोई पानी पी रहा था, न कोई फल खा रहा था, बेकार फल गिर रहे थे, सड़ रहे थे। तो बच्चों ने कहा किंतु अवरुद्धानी धेनुकेन दुरात्मना, आत्मा माने मन, जिस मन बड़ा दूषित है, जो कल है, वह इन फलों को रोक दिया है, किसी को खाने नहीं देता। कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को फल न खाने दे, रोक दे, तो वो है दुरात्मा दुरात्मा। प्रसंग पा करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो फलवान वृक्षों को कटवा रहे और कंटक वन को लगा रहे, अब वही कल्प वृक्ष हो गया है, अब सब जगह कांटा भरो कांटा, और जो फल है वो उनके अधिकार में है।